26 मई दिन मंगलवार, दिन भर के पहले अंक के साथ मैं रेहान फतल। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हंगामा, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने उपराज्यपाल के फैसलों पर सवाल उठाए।
यह अधिसूचना बहुत स्पष्ट रूप से संविधान को दरकिनार करते हुए संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा को, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसकी, उसको दरकिनार करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।
बात होगी मोदी सरकार के एक साल पूरे होने की और आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो हाथियों का दीवाना है।
जो अपने सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं वो किसी के लिए नहीं। जो इंसान जानवर से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, वही इंसान से भी प्यार कर सकता है।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। दिल्ली विधानसभा के दो दिनों के आपातकालीन सत्र में आज सदन में खूब हंगामा हुआ। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने भाजपा विधायक ओपी शर्मा को विधानसभा में कथित तौर पर गैर संसदीय भाषा का प्रयोग करने पर मार्शलों की मदद से बाहर निकलवा दिया। आम आदमी पार्टी विधायक आदर्श शास्त्री ने मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्य सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर पर महाअभियोग चलाने का अधिकार दिया जाए। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों से जुड़ी केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया। ताइवान के प्रधानमंत्री ने साउथ चाइना सी में बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए सभी देशों को क्षेत्र में संसाधनों की खोज के लिए साझा तौर पर काम करने का सुझाव दिया है। ताइवान के प्रधानमंत्री मा यिंग जुओस ने शांति प्रस्ताव में कहा कि क्षेत्र के प्रभुत्व का बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन तेल और गैस जैसे संसाधनों को साझा किया जा सकता है। साउथ चाइना सी क्षेत्र में ताइवान, ब्रुनेई, चीन, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बीच प्रभुत्व को लेकर खींचतान चल रही है। ताइवान के मंत्री मा यिंग जुओस ने कहा,
First of all, exercise restraint, safeguard peace and stability in the South China Sea, and refrain from taking any
साउथ चाइना सी में संयम की जरूरत है। किसी भी एक तरफा कदम से तनाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान जरूरी है। इस मुद्दे पर बातचीत में शांतिपूर्ण समझौते तक पहुंचा जा सकता है। साझा तौर पर सभी देशों को साउथ चाइना सी में जहाजों की आवाजाही और विमानों की उड़ान का रास्ता निकालना चाहिए। ये थे ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग जुओस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत में भीषण गर्मी की वजह से मरने वालों की संख्या 800 के करीब पहुंच चुकी है। जहां देश के कुछ इलाकों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, वहीं सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुई हैं। म्यांमार में 21 लोगों को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को बांग्लादेश के 200 प्रवासियों को ले जा रहे एक जहाज से गिरफ्तार किया गया। म्यांमार और बांग्लादेश प्रवासियों को स्वदेश भेजने पर राजी हो गए हैं। थाईलैंड की सेना ने अंडमान सी में फंसे प्रवासियों की मदद के लिए ऑपरेशन चलाया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैनिक गठबंधन के यमन में किए गए हवाई हमले में एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तरी यमन में हूथी लड़ाकों के कब्जे वाले इलाके में किए गए हमले में ये मौतें हुई। वहीं सऊदी अरब के नाजरान शहर में हूथी लड़ाकों के मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यमन की सरकारी सेना ने दालिया शहर के कई हिस्सों को हूथी लड़ाकों के कब्जे से छुड़ा लिया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर के पहले अंक में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहा सत्ता के बंटवारे का विवाद एक नई दिशा में बढ़ने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के बाद बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन आज हंगामेदार रहा। दिल्ली सरकार ने केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ तो एक प्रस्ताव पेश किया ही, साथ ही उपराज्यपाल के खिलाफ महाअभियोग चला सकने के लिए धारा 155 और 156 में संशोधन का भी प्रस्ताव रख दिया। क्या कुछ हुआ दिल्ली विधानसभा में, सुनिए रोहित जोशी की इस रिपोर्ट में।
दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रहे घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र मंगलवार को शुरू हो गया। पहला दिन काफी गहमा गहमी वाला रहा। एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र की ओर से जारी उस अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जिसमें सेवा क्षेत्र को दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग ला सकने के लिए धारा 155 और 156 में सुधार का प्रस्ताव रखा। आदर्श शास्त्री ने कहा कि विधानसभा को यह प्रस्ताव पास करना चाहिए, ऐसा करने से राज्य के विधानसभा को उपराज्यपाल को हटाने की शक्तियां प्राप्त होंगी। इधर बहस के दौरान हुए हंगामे के चलते मार्शल बुलाकर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा को विधानसभा से बाहर भी कर दिया गया। इससे पहले केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गृह मंत्रालय का आदेश संविधान और कानून का उल्लंघन है।
अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि ये दिल्ली की विधानसभा के अधिकार क्षेत्र पे एक बहुत बड़ा अतिक्रमण है। यह अधिसूचना बहुत स्पष्ट रूप से संविधान को दरकिनार करते हुए, संविधान के तमाम प्रावधानों को दरकिनार करते हुए, संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा को, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसकी, उसको दरकिनार करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है।
सदन में सिसोदिया के प्रस्ताव दिए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों की राय ली और प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में दिल्ली के उपराज्यपाल को सर्वे सर्वा बताया गया है, जिसके बाद ही दिल्ली सरकार ने यह दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात भी की। तकरीबन 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के कामकाज और उच्च न्यायालय के आदेश पर चर्चा हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस पर दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई को सही ठहराया है। आम आदमी पार्टी की ओर से उपराज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए लाए गए इस प्रस्ताव के बाद दिल्ली में सत्ता के बंटवारे को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच की तल्खी बहुत अधिक गहरा जाने के संकेत मिले हैं और ये मामला जल्द ही सुलझता भी नजर नहीं आ रहा। रोहित जोशी, बीबीसी दिल्ली।
दिल्ली विधानसभा में हंगामा।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी को संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। अमित शाह मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उनसे पूछा गया था कि मोदी सरकार के 1 साल होने के बाद भी पार्टी के अहम मुद्दों पर कोई प्रगति क्यों नहीं हुई है। सलमान रावी की रिपोर्ट।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के 1 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त पेश करते हुए कहा कि पार्टी के पास राम मंदिर के निर्माण जैसे बुनियादी मुद्दों को पूरा करने के लिए उतना बहुमत नहीं मिला है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अकेले अपने बूते पर 370 सीटें जीतनी होंगी।
आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 1 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 4413 सभाओं को आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। अमित शाह का कहना था,
आज से लेकर 1 तारीख तक हमने एक संपर्क अभियान शुरू किया है। हम 1 साल की सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। जो डिजाइन बनी है उसके तहत करीब करीब छोटी मोटी देश भर में 4413 सभाएं आयोजित की गई है, प्रदर्शनी भी लगाई गई है, 250 बड़ी सभाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये साहित्य और भारतीय जनता पार्टी का परिचय लेकर करीब करीब 8 करोड़ घर में 3 महीने में जाने का हमारा प्रयास रहेगा।
काले धन पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अगर अपने कार्यकाल का सबसे पहला कोई फैसला किया था तो वो था काले धन पर विशेष जांच दल यानी SIT का गठन।
1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार ने SIT बनाने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट का पहला फैसला काले धन के की जांच के लिए एसआईटी बनाने का हुआ।
अमित शाह का दावा था कि उनकी सरकार एक प्रोएक्टिव सरकार है।
अब शायद मीडिया से भी आगे सरकार प्रोएक्टिव होकर जनता की दिक्कत के समय में जनता के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ आती है, रेल आती है, तो कुछ ही घंटों में मंत्री और प्रधानमंत्री वहां दिखाई पड़ते हैं। अपने पड़ोसी देश नेपाल में अगर भूकंप आता है तो तुरंत ही सरकार प्रोएक्टिव होकर नेपाल में दिखाई पड़ती है। तमिलनाडु में अगर भारतीय मछुआरों पर संकट आता है, उनको फांसी दी जाती है, तो भारत सरकार इंटरवीन करती है। किसी क्रिश्चियन पादरी को अफगानिस्तान में अगवा किया जाता है तो भारत सरकार दखल कर उसको छुड़ा कर लाती।
बिहार के आगामी विधानसभा के चुनाव की चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन के दायरे में विस्तार से भी इनकार नहीं किया।
मेरे लिए हर चुनाव टेस्ट है, बिहार क्यों, मगर इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली और बहुत प्रमुखता से ले रही है। अभी चर्चाएं चल रही है, हमारे दरवाजे तो खुले ही हैं।
दिल्ली और केंद्र की सरकारों के बीच फंसे व्यवस्था के पेच के बारे में बात करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि दोनों के बीच कोई टकराव है ही नहीं।
जो टकराव चल रहा है, सो कॉल्ड टकराव, वो टकराव नहीं है, संविधान के इंटरप्रिटेशन का मामला है। संविधान का इंटरप्रिटेशन राज्य सरकार एक तरीके से कर रही है, केंद्र सरकार दूसरे तरीके से कर रही है। मामला कोर्ट में जाएगा, अपने आप मामला सेट हो जाएगा, इससे राज्यों के साथ दुर्व्यवहार का कोई मामला नहीं है भैया।
बहरहाल अगले कई दिनों तक नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए देश के कई हिस्सों में कार्यक्रम कर रही है, मगर अपने बुनियादी मुद्दों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटों वाले बहुमत का फिलहाल तो इंतजार करना पड़ेगा। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर समारोहों का सिलसिला जारी है। राजनीतिक रूप से जागरूक बनारस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उन्हें एक साल बीत गए हैं। इस बीच वहां बदलाव हुए भी हैं या नहीं, हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव हाल ही में बनारस में कुछ दिन बिता कर आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि बनारस को एक साल में कुछ बदला हुआ पाया उन्होंने।
रेहान साहब, ईमानदारी की बात यह है कि पिछले साल और पिछले साल के बीच में मैं तीसरी दफे बनारस गया, और जो बनारस पहले जैसा था वैसा आज भी है बनारस। थोड़ा बहुत फर्क बनारस में यह दिखता है कि सड़कें खुदी हुई हैं, क्योंकि वहां पर सीवर डालने का काम चल रहा है। उसका नरेंद्र मोदी बतौर सांसद से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जिला प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है। और बनारस चूंकि एक बड़ा प्राचीन शहर है, सैकड़ों साल पुराना वहां का सीवर सिस्टम था जो जवाब दे रहा था, इधर उधर तमाम जगह वो उसमें चोट आ रही थी, नुकसान दिख रहा था, इसलिए उसका काम हो रहा है। वरना बनारस में कोई बदलाव ज्यादा नहीं है। सिर्फ वो घाट जहां पर नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान की बात कही थी, 80 घाट, वहां थोड़ा फर्क है, और उसके अलावा ज्यादा कोई बदलाव नहीं है बनारस में। गंगा में अभी भी फूल पत्ती और फूल मालाएं पॉलिथीन दिखती हैं, सड़कों के किनारे अभी भी लगता है कि गाय भैंस और तमाम किस्म के जानवर तबेले की तरह बैठे रहते हैं, और ट्रैफिक जैम का मंजर वही है जैसा एक साल पहले था।
और लोगों का मोह नरेंद्र मोदी के प्रति बरकरार है या उसमें कुछ कमी देखते हैं?
अगर मैं कहूं कि लोगों का मोह नरेंद्र मोदी के प्रति कम हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल जो था एक जुनून था लोगों में नरेंद्र मोदी को लेकर, क्योंकि पिछले साल ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने मोदी को वोटों में तब्दील करके दिखाया भी अपना जो उनका भरोसा था, उनका ये मानना था कि नरेंद्र मोदी ठीक वैसा कुछ करेंगे बनारस में जैसा गुजरात के बारे में बताया जाता रहा है बनारस के लोगों को या सुना है उन्होंने। ये बनारस का आदमी ही शायद सबसे बेहतर जानता है कि वैसा बनारस में करना सूरत की तरह, वडोदरा की तरह, अहमदाबाद की तरह बहुत मुश्किल है, मैं कहूंगा नामुमकिन है, क्योंकि बनारस एक प्राचीन शहर है, उसकी एक संस्कृति है, उसका एक मिजाज है, उसको चेंज कर पाना, उसको बदल पाना रातों रात और वो भी साल भर में तो मुमकिन नहीं था। और मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा और लोगों की उम्मीद अगर कहूं तो नरेंद्र मोदी, सांसद नरेंद्र मोदी से थोड़ी कम हुई है।
ये बताइए क्या करें नरेंद्र मोदी, क्या उनको करना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट उनके सामने होना चाहिए? आप बनारस को नज़दीक से जानते हैं अभी तक, और ये भी जग जाहिर है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तो करना होगा उन्हें।
मुझे लगता है कि जो पहली चीज़ नरेंद्र मोदी को या किसी भी सरकार को बनारस के लिहाज से करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि ये मानना, ये कहना बंद करें कि बनारस को क्योटो की तरह बना देंगे या बनारस को वडोदरा की तरह बना देंगे। बनारस की अपनी एक पहचान है, और जो बनारस की पहचान है, जो प्राचीन बनारस की पहचान है, जिसमें गली है, पान की दुकानें हैं, ठंडाई की दुकानें हैं, खस्ते वाले हैं सड़कों पर बैठे हैं, समोसे छन रहे हैं, लौंग लते मिल रहे हैं शाम को, सुबह 5:30 बजे रेहान साहब बनारस में आज भी हिंदू हो चाहे मुसलमान सड़कों पर आकर बैठ के ही चाय पीनी है उनको, मंजन शायद घर में जाके दातुन बाद में करते होंगे, और उनका वही ग्रुप आज भी आता है। तो वो जो फैब्रिक है बनारस का, वो सड़क, उस सड़क को बनाने की जरूरत है, वहां पर बिजली पहुंचाने की जरूरत है, सफाई कर्मचारी 10 के बजाय 50 अपॉइंट करने की जरूरत है, ना कि उस सड़क के ऊपर एक ऐसा फ्लाईओवर बना दें जिससे वो सड़क भी खत्म हो जाए, उस पर धूप आनी बंद हो जाए, और गलियों के ऊपर मकान में अगर आदमी दुमंजिला मकान में ऊपर उठे तो उसको फ्लाईओवर पर चढ़ के कपड़े फैलाने पड़ेंगे।
ये थे हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव। जहां कई तबकों में मोदी सरकार को लेकर असंतोष है, तो वहीं उनका समर्थन करने वाले भी कम नहीं है। बीबीसी ने बात की वॉशिंगटन में रह रही NRI डॉक्टर अंजू प्रीत से। अंजू जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जानते हैं उनकी मोदी सरकार के बारे में क्या राय है।
मेरे विचार में मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल को अगर आप देखें तो अच्छे दिन आ गए हैं। एक सामान्य सा उदाहरण में देते हुए कहूंगी कि मोदी सरकार के संदर्भ में जो घोटाला शब्द है वो आम आदमी के शब्दकोश से बिल्कुल गायब हो गया है। एक NRI के नाते मैं आपसे कहूंगी कि भारतीय होने पर अब हमें गर्व महसूस होता है। गौरवान्वित हम कभी से हैं, लेकिन अगर आप मोदी जी की कार्यशैली को देखें तो उन्होंने देश को एक युवा देश के रूप में विश्व पटल पर दिखाया है, और जहां भी वो जाते हैं विदेशी सरकार और कंपनियां सब जो हैं भारत में निवेश करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको भी इस सरकार में इतना विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो देश जो है अपने चरम को हासिल कर सकता है। कि अभी जो रीसेंट टाइम मैगजीन जो निकली है उस पे मोदी जी की तस्वीर है, और उसके बारे में, मोदी जी के बारे में स्वयं राष्ट्रपति ओबामा ने लिखा है उनकी कार्यशैली के बारे में। तो सब लोग जानते हैं मोदी जी को, और यहाँ पे जब वॉशिंगटन DC में आए थे उनका जो स्वागत हुआ, जो उन्होंने निर्णय लिए, और MSG में जो लोगों ने उनका स्वागत किया, वो जो है सारा यहाँ पे पूरे न्यूज़पेपर मीडिया में हर जगह गया। तो उससे जो है उनको सब जानते हैं और काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जब लोग मोदी जी के बारे में बात करते हैं। जब हम NRI आपस में बैठ के बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आप कौन से देश से हैं। तो जब हम अपने देश के बारे में बताते हैं तो अब हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम अपने देश के बारे में बताएं कि वहाँ पे कौन कौन सी गरीबों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने कौन सी योजनाएँ शुरू की हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या पहल ली है। तो वी फील वेरी मोटिवेटेड।
ये थी वॉशिंगटन में रहने वाली डॉक्टर अंजू प्रीत। लेकिन कई लोगों का मानना है कि तमाम दावों के बावजूद नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास नहीं जीत पाए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष ताहिर महमूद इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को फेल करार देते हैं।
सारी दुनिया जानती है कि इंडिया में माइनॉरिटीज जो है वो इस पिछले एक साल में ज्यादा परेशान रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सरकार के आने से पहले कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन जबान दराजी इतनी नहीं थी कि जिसके मुंह में जो आए बकवास करता चला जाए और हुकूमत में जो बैठे हैं वो चुपचाप गुपचुप तमाशा देखते रहे। ये नहीं होता था पहले, बस इतना ही फर्क पड़ा है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सब जानते हैं, पूरी दुनिया देखती है, जो लोग जो इनके जिनको ये रोक सकते हैं, ये हुकूमत में किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, ये जिन लोगों को इस तरह की माइनॉरिटीज के अगेंस्ट नफरत फैलाने की जो आदत पड़ गई है उसको रोक सकते हैं, वो नहीं रोक रहे हैं। और ये जमाने में टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, जिसमें TV के ऊपर एक एक मिनट की, एक एक जगह की, एक एक गाँव की छोटी छोटी जगह जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया में जो है वो टेलीकास्ट होता है, दिखाया जा रहा है, उसमें आप ये कहने देने से कि हम तो नहीं मानते, इससे बच थोड़ी जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके साथ मुसलमानों या ईसाइयों के साथ पहले बहुत अच्छा होता था और अब बहुत खराब हो रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन जबानों पर काबू नहीं है, और जो लोग जबानों पर काबू कर सकते हैं, बात का जख्म जो होता है वो तलवार के जख्म से ज्यादा होता है। तो पहले जो कुछ हो रहा था वो मैं नहीं जानता, लेकिन जख्म बात के जख्म बहुत लगाए जा रहे हैं माइनॉरिटीज को, और उसकी वजह से माइनॉरिटी बहुत दुखी हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो सब कभी छठे शमाए को एक स्टेटमेंट दे दिया लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया जा रहा है किसी के खिलाफ। आज तक किसी तरह का कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया कि जो प्रिवेंटिव साबित हो, जिससे दूसरे सबक लें कि भाई हमें अपनी जबान इतनी गंदी नहीं करनी चाहिए।
ये थे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ताहिर महमूद।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
ये बीबीसी है, आप दिन भर का पहला अंक सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। ऐसे कई लोग हैं जो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं जो विश्व में संकटग्रस्त हो चले जीवों को अपने बूते थोड़ी ही संख्या में सही लेकिन बचाने की कोशिश में लगे हैं। एशियन एलिफेंट यानी हाथी ऐसा ही एक जीव है। इनकी आबादी में भी तेजी से कमी आ रही है, लेकिन इस बीच हाथियों के कई दीवाने ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर हाथियों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। पटना से सीतू तिवारी ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवा रही हैं।
चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की इस फिल्म हाथी मेरे साथी में नायक हाथियों से दिलोजान से मोहब्बत करता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी कोई हाथी से इस कदर मोहब्बत कर सकता है? क्या हाथियों के लिए कोई अपनी जमीन परिवार सबको ताक पर रख सकता है?
चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी।
आइए हम आपको मिलाते हैं पटना से सटे मीर ग्यास जग गांव के अख्तर इमाम से। 50 साल के अख्तर इमाम को पूरे इलाके में हाथियों से उनके प्रेम के लिए हर कोई जानता है। बिहार सरकार का वन विभाग अक्सर किसी हाथी को बचाने के लिए उनसे मदद मांगता है, और वो बिना कोई पैसा लिए हाथियों को बचाने के लिए जंगल जंगल भटकते रहते हैं। हाथियों से अख्तर का याराना 12 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। जमींदार परिवार के थे, लेकिन हाथी की संगत में रहने के लिए घर से अक्सर भाग जाते। जहां उनको हाथी मिलता वहीं महावत के सहायक के तौर पर काम करते। परेशान घर वालों ने आखिरकार जब अख्तर को हाथी खरीद कर दिया, उसके बाद ही अख्तर ने घर से भागना छोड़ा। अख्तर अब बिहार में हाथी गांव बसाना चाहते हैं। हाथी गांव के बारे में अख्तर बताते हैं।
हाथी गांव का है कि वहां जब हाथी गांव हो जाएगा तो रिटायर बूढ़ा है उसका भी, जो लाचार है उसका भी, जो हाथी मालिक अगर कहीं रखे हुए है डोमेस्टिक, तो कॉल सेंटर भी हमारे यहाँ, डॉक्टर भी हो हमारे यहाँ, माहौतों को ट्रेनिंग भी दिया जाए, हमारे यहाँ हाथी पर रिसर्च भी हो कि कैसे रखा जाए।
बिहार सरकार हाथी गांव बसाने की सैद्धांतिक सहमति साल 2013 में ही दे चुकी है, लेकिन अभी जमीन पर बहुत ठोस काम नहीं हुआ है। 2013 के वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महज 64 हाथी बचे हैं। बिहार में हाथियों को लोग शान के तौर पर पालते थे, और दूसरे राज्यों की तरह उनका व्यावसायिक इस्तेमाल कम है। साल 2002 में हाथी की खरीद बिक्री पर लगी रोक ने न सिर्फ हाथी मालिकों हाथियों बल्कि महावतों की हालत भी खराब कर दी है। दरअसल राज्य के कई गांव ऐसे हैं जहां ज्यादातर आबादी महावत के पेशे से जुड़ी थी, लेकिन हाथियों की संख्या कम होने से ये पेशा भी चौपट हो गया। पेशे से महावत सोनू रानी सागर गांव के हैं, जहां 200 घर महावत के पेशे से जुड़े थे, लेकिन अब गांव वाले दूसरे काम कर रहे हैं। सोनू बताते हैं,
हमारे गांव में कम से कम 200 महावत थे, अभी तो पूरा 100% में 50% खत्म हो गया है, 50% तक अभी है। अभी जैसे भी उन लोग का बच्चा है तो आधा मतलब दूसरे काम में लग गया।
स्थानीय लोग भी हाथियों की घटती संख्या के खतरे को समझ रहे हैं। लोगों को डर है कि आने वाले वक्त में हाथी कहीं सिर्फ किताबों में ही न रह जाए। मीर ग्यास जग के उमेश मालाकार अपनी ये चिंता जाहिर करते हुए पुराने दिनों को याद करते हैं।
हम लोग के राज में तो 1975 में बता रहे हैं कि अगर पहले हाथी बहुत देखते थे, जन्ने देखिए उन्हीं टन टन जा रहा हाथी, लेकिन अब इतना लुप्त हो गया कि देखेला नहीं मिलता है।
अख्तर पुरखों से मिली जमीन का एक तिहाई हिस्सा बेच चुके हैं, जिसके चलते उनकी बेगम और बच्चों ने भी उनसे दूरी बना ली है। उनके पास 2 हाथी हैं, और उनकी संस्था एरावत ने बोधगया में जमीन लीज पर लेकर हाथियों के लिए एक सेंटर खोला है।
अक्सर कहते हैं कि जो आदमी जानवर से प्यार नहीं कर सकता वो इंसान से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता।
जो अपने सिर्फ अपने लिए जीना चाहते वो किसी के लिए नहीं। जो इंसान जानवर से मोहब्बत करेगा प्यार करेगा वही इंसान से भी प्यार कर सकता है। जो इंसान जानवर से मोहब्बत नहीं करेगा वो इंसान का दर्द क्या समझ सकता है।
अक्सर अकेले ही हाथियों के संरक्षण के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने हाथी गांव पर सहमति दे दी है और बाराचट्टी में जमीन भी चिन्हित कर ली है, लेकिन सरकार के काम की रफ्तार बहुत सुस्त है, जबकि हाथियों की संख्या घटते जाने की रफ्तार बहुत तेज। सीतू तिवारी, मीर ग्यासचक, पटना।
अख्तर का हाथी प्रेम। और अब बारी है खेल समाचारों की। आदेश मेरे सामने है, बताइए आदेश क्या समाचार है।
जी देखिए, फ्रेंच ओपन में तो मुकाबले जारी हैं, उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वालिफाइंग मुकाबले आज से शुरू हो गए, जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। लेकिन अगर पहले बात की जाए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की, तो थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने 41वें ओवर में 2 विकेट खोकर 271 रन बना लिए थे। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हफीज़ ने 86 रन बनाए, जबकि अजहर अली ने 79 रन बनाए। इन दोनों भी बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 170 रनों की साझेदारी हुई। और थोड़ी देर पहले शोएब मलिक, जो कि काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तानी टीम में वापसी कर रहे हैं, वो 63 रन और हारिस सोहेल 36 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। उधर अगर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात की जाए तो स्पेन के डेविड फेरर ने, जो कि 7वीं वरीयता हासिल है, उन्होंने स्लोवाकिया के लुकास लेंके को 6-1, 6-3, 6-1 से मात दी। इनके अलावा 9वीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के बारिन चिलिच भी अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। और अगर महिला एकल वर्ग के मुकाबलों की बात की जाए तो 5वीं वरीयता हासिल डेनमार्क की कैरोलिना वोज़नियाकी ने थोड़ी देर पहले इटली की कैरिन क्रैप को 6-3, 6-0 से हराया। इनके अलावा महिला एकल वर्ग में ही चेक गणराज्य की टेरेजा सिमिटकोवा, जर्मनी की जूलिया जॉर्जिस, चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा और रूस की स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही हैं। उधर आज से ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले शुरू हुए, जहां मिश्रित युगल में भारत के स्टार खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा और उनके जोड़ीदार प्रणव जैरी चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया के चॉम चेन और वांग सुसान की जोड़ी को 21-14, 21-6 से मात दी। इनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में भारत के आर एम वी गुरुसाईदत्त ने मलेशिया के आई वेई जियान को 21-13, 21-9 से, और उसके बाद दूसरे क्वालिफायर में जापान के काजुबासा साकाई को 21-15, 21-8 से हराकर मुख्य दौर में जगह बनाई, जहां उनका सामना शीर्ष वरीयता हासिल चीन के चेन लॉन्ग से होगा, यानी आसमान से गिरे खजूर पर अटके, क्योंकि बहुत ही कठिन मुकाबला होगा। वैसे अश्विनी पोनप्पा और प्रणय जैरी चोपड़ा ने भी दूसरा क्वालिफायर मैच जीतकर मुख्य दौर में अपनी जगह बना ली है। पिछले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम करने वाली भारत की साइना नेहवाल दूसरी वरीयता के साथ कल पहले दौर में मलेशिया की ची लीडिया यी यू का सामना करेगी। इनके अलावा महिला एकल वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में 2 बार की कांस्य पदक विजेता भारत की पीवी सिंधु 8वीं वरीयता हासिल चीन की यिहान वांग से भिड़ेंगी। पुरुष एकल वर्ग में 4थी वरीयता हासिल भारत के श्रीकांत डेनमार्क के ऑस क्रिस्टियन विटिंग्स का सामना, और पी कश्यप 6ठी वरीयता हासिल चीन के झेंग मिंग वांग का सामना करेंगे। कल ही महिला युगल वर्ग भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा भी अपना दावा पेश करेंगी। कल का दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और जिस तरह के कठिन मुकाबले हैं, तो साइना नेहवाल के अलावा बाकी सभी खिलाड़ियों को तीसरे दिन खेलने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
दिल्ली विधानसभा के 2 दिनों के आपातकालीन सत्र में आज दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकारों से जुड़ी केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने मांग की कि राज्य सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर पर महाअभियोग चलाने का अधिकार दिया जाए। राजस्थान में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। दोनों पक्ष जयपुर में दूसरे दौर की बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग जुओस ने साउथ चाइना सी में बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए सभी देशों को क्षेत्र में संसाधनों की खोज के लिए साझा तौर पर काम करने का सुझाव दिया है। भारत में भीषण गर्मी की वजह से मरने वालों की संख्या 800 के करीब पहुंच चुकी है। म्यांमार में 21 लोगों को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को बांग्लादेश के 200 प्रवासियों को ले जा रहे एक जहाज से गिरफ्तार किया गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर को विराम देते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।